ठीक है। हाँ जी
मीनाक्षी गांधी वांटेड टू आस्क समथिंग।
हाँ जी हाँ जी बोलिए।
मैं ये कह रही थी कि जो हमने ड्रीम में देखा वो तो माइंड में है, समझ में आया, पर सन जो सन और स्टार तो बाहर है, वो कैसे माइंड में
सोचिए, देखो किसी के बताने से नहीं होगा, सोचिए आप किसको पता है कि सन और स्टार्स हैं बाहर, कौन जानता है, उस पे जाइए।
आंखों से भी दिखता है ना, लेकिन माइंड जानता है पर दिखना भी है।
अच्छा ठीक है, आंखों से दिख रहा है, ओके। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कौन कर रहा है? क्या आंखें अपने आप से जान सकती है कि वो सन और स्टार्स हैं?
नहीं, माइंड कर
आंखें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रही हैं, बस वो इंद्रियां हैं, कुछ नहीं कर रही, वो तो इंफॉर्मेशन लेके आपको दे रही हैं, बाकी तो माइंड कर रहा है।
फिजिकली वो जरूर बाहर दिख रहे हैं, कोई चीज ऐसी सामने आ जाए जो आप हम नहीं जानते हो, जो हमारा माइंड नहीं जानता होगा, वो हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए वो माइंड बताता है।
हर चीज उसी पे है, माइंड पे। ये बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, दिस इज वेरी टफ, बट They have really done a good job in explaining it.
Ah, बहुत अच्छे से explain किया है।
That means even all this knowledge which we are taking is also in the mind.
Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
तो अभी तो तभी वो अभी हमारे लिए illusion ही है।
बिल्कुल।
Really.
Yes, yes. लेकिन एक फर्क है, देखो क्या होता है, एक माइंड में जो आपके इंफॉर्मेशन जा रही है, जो आपको इल्यूजन बढ़ा रही है ना, जो इल्यूजन है, अब इल्यूजन को क्या हटाएगा? इल्यूजन को हटाने के लिए दूसरी इल्यूजन लगेगी। यहाँ पे हम बोलते हैं कि जब कांटा घुसता है तो कांटे को निकालने के लिए भी कांटा ही लगता है ना। तो क्योंकि आपके माइंड में इतना कुछ भरा हुआ है, अब उसको बाहर निकालने के लिए आपको ये वाला ज्ञान दिया जा रहा है, पर ये भी माइंड में ही है, यू आर राइट। तो ये माइंड इसको निकालेगा, उसके बाद इसको भी फेंक दिया जाएगा और उसको भी फेंक दिया जाएगा, बोथ ऑफ देम। बिल्कुल वही जो हम बोलते हैं ना कि ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं मिलता, अज्ञान का नाश होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है, अगर आप एक्चुअली देखो आपको कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आपकी जो मान्यताएं हैं उनको तोड़ा जा रहा है।
हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो अब हम इतनी इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर रहे हैं तो इससे तो माइंड हमारा और भरता जा रहा है, तो फिर हम अब माइंड से अलग कैसे हो पाएंगे?
मैं वही बोल रही हूँ, ये तुम्हारा भर नहीं रहा है माइंड, ये तुम्हारे अज्ञान को खाली करेगा, ये खाली करने का काम कर रहा है। क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे हो, क्यों वो बार बार वही चीज आपको बता रहे हैं? आपकी मान्यताओं को तोड़ने के लिए। और एक पॉइंट, वो जो पॉइंट जब आता है वहां पे ये दोनों गिर जाते हैं, तभी तभी खाली होगा वो जो अननेसेसरी भरा हुआ है। तो अभी हाँ हो सकता है कंफ्यूजन हो, इस समय में हो सकती है कि ये है कि वो है, लेकिन यही तुमको वहां लेके जाएगा, और जब वहां पहुंच जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर। मुझे ना अभी आपके उससे, सीमा के उससे एक और देखो एग्जाम्पल, सॉरी, ऐसे ऐसे आते हैं कि जैसे जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो भी एक और दवाई खानी पड़ती है ना, क्या खाते हैं?
उससे पहले तो पेट भरने के लिए खाना पड़ता
है कि नहीं? तो ये भी जो है ये लेग्जेटिव का ही काम कर रहे हैं। ये उसको भी निकाल देगा बाहर, ठीक है ना? तो ये भी खाना ही पड़ रहा है, पर ये मनन करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। और फिर से मैंने बोला, जैसे वही चीज पे वापस जाइए कि जब आप रात में सोते हो, लाइट्स बंद हैं, आप बोल रहे हो सूरज नजर आ रहा है मुझे, है ना? सपने में भी कभी ना कभी तो सूरज देखा होगा, लाइट तो देखी होगी, लाइट बंद है, आंखें बंद हैं, सोए हुए हो, कैसे लाइट नजर आई सोते हुए स्वप्न में, है ना? तो आप जो सूरज को देख रहे हो इन आंखों से, वो आंखें नहीं देख रही हैं, वो कुछ और चल रहा है, यही समझाया जा रहा है। असल में अगर हम देखें ना, वही अगर शुरू से जो हमारे पहले इंडिया का कल्चर था, जो गुरुकुल और ये सब चीजें आपको बचपन से ही बताई जाती थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप रियलाइज करोगे इतनी ऑब्वियस हैं, एकदम सामने हैं, लेकिन हमने उन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया. क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि को डायरेक्शन कुछ और दे दी, हमें कुछ और ही सिखा पढ़ा दिया, तो वो जो ऑब्वियस चीजें हैं उन पे हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है. होता है ना ऐसे कि आपने अगर किसी का ध्यान हटा दिया तो जहां देखना चाहिए वो नहीं देख पा रहे, अब आपका दिमाग उन चीजों के अंदर घुस गया है तो ये देख ही नहीं पा रहा है. तो ये क्या बोल रहे थे कि वर्ल्ड एग्जिस्ट्स ओनली एज लॉन्ग एज द माइंड एग्जिस्ट्स, नो माइंड नो वर्ल्ड. दैट इज व्हाई द वाइज से कॉन्करिंग द माइंड इज कॉन्करिंग द वर्ल्ड, है ना. बार बार ये चीज पे बोली गई है कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाइए, आप कितने भी ओलंपिक के मेडल्स ले लीजिए, आप राजा बनके सारे दुनिया को जीत लीजिए, लेकिन सिर्फ अपने मन को जीतना वही सबसे बड़ी बात है. मन के ऊपर रूल करना, कॉन्करिंग द माइंड, तो आप पूरी दुनिया पे वैसे ही रूल हो जाता है. और शंकराचार्य ने बिल्कुल वही किया, और वो भी कौन सी उम्र में, सिर्फ 12 साल के थे जब शंकराचार्य को ज्ञान हुआ था, 12 साल के. और उस समय उन्होंने सारे के सारे वेद, उपनिषद, संस्कृत सब कुछ उनको आता था. और फिर उन्होंने वो जो इतनी गूढ़ ज्ञान था, इतना गूढ़ ज्ञान, उन्होंने उसको सिंपल करके, छोटा करके, और उनकी जो कमेंट्रीज, उनकी जो बुक्स हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारा. एक बार इन्होंने बताया भी था ना कि भगवद गीता भी बहुत लंबी होती थी, शंकराचार्य ने उनको 700 वर्सेस में लेके आए. फिर जितने भी हमारे वेद हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, पहले सब संस्कृत नॉलेज में, मतलब ये जो है अवेलेबल ही नहीं. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो हम लोगों को सबको संस्कृत सिखाई जाती थी, बचपन से ये टेक्स्ट सिखाए जाते थे, उसके बाद वो सिखाने बंद हो गए. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो नॉलेज तो सारी उस लैंग्वेज में है जो इनक्रिप्टेड है, जो डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, और हम लोगों को आती नहीं है, तो उन्होंने उसको बहुत सिंप्लीफाई किया था. हर गुरु असल में यही कर रहा है, यही काम करता है ना, कि वो उस समय का जो लेवल होता है उसके हिसाब से उसको सिंप्लीफाई करता जाता है. तो शंकराचार्य ने भी अपने समय में यही किया. और अभी तक जितने भी स्कूल्स हैं आप देख लीजिए, नॉन डुअल फिलॉसफी के, वेदांत के, अद्वैत के, सब के सब शंकर की फिलॉसफी पे ही चल रहे हैं, सारे के सारे. चाहे आप कोई किसी को भी उठा लीजिए, इवन जो बाहर के हैं, यू विल फाइंड जितने भी वेस्टर्न फिलॉसफर्स भी हैं, नॉन डुअल फिलॉसफर्स, आपको अगर वापस आएंगे तो उनके जो रूट्स हैं आपको शंकराचार्य में ही मिलेंगे, यहीं पे मिलते हैं सब के सब. इवन द बिगेस्ट साइंटिस्ट, आपको पता है, इवन निकोला टेस्ला, ही हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप, वो जो उनका था वो भी एक तरह से, वो साइंटिस्ट थे पर एक तरह से योगी थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उपनिषद और इन सबसे ही ज्ञान लिया है, दे हैव ऑल रेफर्ड टू इट. तो सबसे ज़्यादा ज्ञान यहाँ पे सब दिया गया हुआ है पहले से ही. तो शंकराचार्य ने पूरे भारत देश में चारों तरफ इन्होंने बहुत ट्रैवल किया. और उस समय, अभी तो बहुत इजी हो गया है, उस समय तो पैदल चल के जाना पड़ता था हर जगह ताकि वो ये ज्ञान बांट सके. ज्ञान प्रसार भी करना होता है ना, आपने जो चीज़ समझी है, जानी है, ताकि इतना ज्ञान है बताया जाए, तो वो सब जगह घूमे. और फिर उन्होंने चार मोनेस्ट्रीज, आपने, आपको पता होगा शंकराचार्य मठ हैं हमारे देश में, जो शंकराचार्य पीठ मठ माने जाते हैं चार, मुझे तो चारों के नाम नहीं पता, एक ही तीन और हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. और फिर उन्होंने उनके जो सबसे मेन शिष्य थे उनको वो हैंडल कर दिए थे कि वो आगे, उनको सिखाने के बाद कि वो आगे चलता रहे. तो अभी तक वो चलते जा रहे हैं, फिर वो जो लिनेज होती है कि उनके शिष्य, उनके शिष्य, ताकि वो परंपरा चलती रहती है. और जो अपने स्वामी रामा हैं, स्वामी रामा को भी शंकराचार्य का उपाधि मिली थी, वो भी 2 साल तक रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो तो योगी हैं और बहुत इंडिपेंडेंट हैं. और क्या होता है ये मठों में, आजकल तो मुझे मालूम नहीं है क्या सीन है, कितना ज्ञान अनुभव है कि नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरह से पॉलिटिकल पोस्ट हो जाती है ना, कि अब अगले को शंकराचार्य बनना ही है. अब वो इस बेसिस पे बनेगा कि उसे ज्ञान हो गया है, अनुभव हो गया है, या इस बेसिस पे बनेगा कि वो मतलब बहुत सारे और रीजंस होते हैं, तो कोई कुछ कह नहीं सकता. तो जब स्वामी रामा को बनाया गया, ऑब्वियसली वो तो एनलाइटेंड मास्टर थे, लेकिन वो रह नहीं पाए, तो उनके इस लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स में उन्होंने दिया हुआ है कि कैसे वो भाग गए थे वहाँ से. तो शंकराचार्य के उसमें जो हमारे इनको बोला जाता है ट्रूइज्म्स, या फिर महावाक्य, महावाक्य है जो सही शब्द है, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्म ब्रह्म, ये चार वाक्य हैं, महावाक्य इनको बोला जाता है। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है, इन चार वाक्यों में सारा ज्ञान आ जाता है। तो अगर हम लें कि तत्त्वम असि, मतलब यू आर दैट, है ना, तत्त्वम असि यू आर दैट। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम मतलब प्रज्ञा, नॉलेज, ज्ञान ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही ज्ञान है। फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और अयम आत्म ब्रह्मा, इसका मुझे एग्जैक्टली अयम का मतलब नहीं पता, बट मोर और लेस शायद ऐसा ही मतलब रहेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ या आत्म ही ब्रह्म है, शायद आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मन।
अयम का मतलब है यह, संस्कृत में दिस, दिस।
ओके ओके, हाँ ठीक है,
ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा ब्रह्म।
हाँ वही मुझे लगा था कि यही होगा, कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। फिर जितने भी उनके डिसाइपल्स थे उनको बोला गया था कि उनका, उनकी जितनी बुद्धि हो, उनका जितना ज्ञान हो, उसके हिसाब से वो आगे इस ज्ञान को बताते जाएं। फिर देखो अगला सेंटेंस, दोज हु वर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड सच फोक वर टू बी एंगेज्ड इन रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस। देखो कितना क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप में इतनी, जो लोगों में बुद्धि नहीं है, नहीं समझ सकते, इतना गूढ़ ज्ञान है इस चीज को, उनको क्या करना है, उनके लिए कुछ रिचुअल्स बता दिए गए कि आप ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन वो रिचुअल्स भी जब शंकराचार्य ने बनाए होंगे तो उनका भी कोई मतलब होता होगा, ऐसा नहीं है कि वो जस्ट ऐसे ही हैं, वो भी रिचुअल आपका एक स्टेप होगा आपको कहीं आगे ले जाने के लिए। Those who were not capable of doing even this, they were to be engaged in activities of service and charity. देखिए यहाँ पे एक एक चीज खोली जा रही है। तो जो ritualistic practices भी नहीं कर सकते, है ना, वो भी उनके अंदर इतना नहीं है, उनको क्या बोला गया कि तुम कर्म करो, सर्विस करो, डोनेशन करो, चैरिटी करो। और आप देखोगे, अब आपको एक और चीज यहाँ पे समझ में आएगी कि जो बहुत सारे लोग चैरिटी और सेवा को ही सबसे बड़ा कर्म मान लेते हैं और सोच लेते हैं कि बस ये ही है, यही करने से ही सब हो जाएगा, होता है कि नहीं? ये क्यों हुआ है? ये भी क्योंकि अगर हम बोलें कि इतना ज्ञान है कि जो चीज़ सिर्फ सबसे, वही बात आ गई, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, कि उसी को ही पूरा मान लिया कि बस यही है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज, इतना ही कर लें, दैट इज़ इनफ, इनफ फॉर अस, है ना, उसके आगे अब हम जा ही नहीं रहे। Those who were devotionally inclined were to be guided in devotional practices. Those who possessed discerning intellects were to be taught Vedantic knowledge. ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? तो अगेन आपके कुशलता के अनुसार, जब शंकराचार्य ने भी ये जो मठ बनाए, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को वेदांत पढ़ा जाएगा, उनको पता है हर किसी की बुद्धि नहीं है वो पढ़ने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंगली आपको काम दिए गए हैं। And with consistent practice and contemplation, those who became liberated were to share their liberation with others by guiding them on the path. You know? एक तो पहले कि जिनको बुद्धि है उसके हिसाब से बताएं, और जिनको ज्ञान हो जाए, जो मुक्त हो जाए, वो अपनी मुक्ति के साथ दूसरों को शेयर करें, उसका प्रसार करें। Such dedicated spiritual aspirants are like soldiers leading a highly disciplined life and executing their spiritual duties unto themselves and others with great diligence and commitment. तो ये जो, और आप देखिए ये हर ट्रेडिशन में यही होता है, शंकराचार्य में यही है, और फिर रामकृष्ण मठ का देखिए आप, जो विवेकानंद जी ने सेट किया था बेलूर मठ से, अब तो कितना फैल गया है रामकृष्ण मिशन चारों तरफ, और वहाँ पे भी यही है, जो भी लोग वहाँ जो ज्वाइन करते हैं, जो वहाँ के मंक्स होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो उनका अपना भी प्रैक्टिस चल रहा है, और फिर जैसे जैसे उनकी जितनी विकास होता है उसके हिसाब से वो आगे भी वो यही बता रहे हैं, है ना, बाहर उसमें। इनफैक्ट आप लोगों को ध्यान होगा, जो विवेकानंद जी को जब पहली बार अपना ये हुआ था, एक्सपीरियंस हुआ था अपने ब्रह्म होने का, तो इन्होंने, रामकृष्ण परमहंस जी ने उनका वो वापस ले लिया था, क्योंकि उन्होंने ही दिया था। जब गुरु आपको देता है अनुभव, तो गुरु के हाथ में चाबी होती है ना, कि वो अनुभव दिया और वापस ले लिया। कैसे? उन्होंने बोला, तो ऑब्वियसली वो तड़पते थे, क्योंकि अगर उसका आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप संसार में नहीं रहना चाहते हो, संसार बहुत लोअर वाइब्रेशन के ऊपर है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये चाबी तुमको मैं वापस नहीं दूंगा, क्योंकि तुम संसार में, तुमको काम करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पे, है ना, तो तुमको काम करना है। जब तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें ये चाबी दे दी जाएगी, जब तुम तैयार होगे। उसके बाद विवेकानंद जी ने बहुत काम किया है, आपको पता ही है, रामकृष्ण मिशन सारा सेट करना, बेलूर मठ का, जिन लोगों ने देखा होगा बेलूर मठ का, बहुत ही बढ़िया बनाया है और इतने कम समय में बना था वो, इट इज़ रियली अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल। मुझे तो वो ताजमहल से कहीं ज़्यादा अच्छा लगा, उसका जो पूरा का पूरा सेटअप है। और फिर जैसे ही उनका काम पूरा हुआ, आपको पता है कि वहीं वहाँ पे अभी कमरा भी है विवेकानंद जी का, वो उस कमरे में चले गए और उन्होंने जाके दरवाज़ा लॉक कर दिया, उन्होंने बोला कोई खोलेगा नहीं। तो दो दिन के बाद जब उनका दरवाज़ा खोला गया तो वो ऐसे ही बस बैठे हुए थे, जा चुके थे। तो वही, जैसे ही उनका काम समाप्त हुआ तो गुरु ने चाबी वापस दे दी कि अब तुम निकल जाओ यहाँ से। तो यही है, तो ये हर ट्रेडिशन में यही चलता है कि जो भी जानते हैं वो आगे फिर आगे आगे बताते हैं। शंकराचार्य सेज दैट वन हैज टू गो टू अ मास्टर टू अबटेन द आईज ऑफ ज्ञान, है ना, फिर से वही गुरु की बात आ गई कि गुरु के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा। और जैसे तुम एक मंदिर में जाते हो चप्पल को बाहर उतार कर, ऐसे ही मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर को बाहर उतार कर यू हैव टू एंटर अ डिसाइपल मास्टर रिलेशनशिप विद द गुरु। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे चप्पल उतार के मंदिर में जाते हो तो इस शरीर को छोड़कर, इस उससे मत जाओ कि मैं ये शरीर हूँ मैं हूँ, नहीं, उसको छोड़कर तुम्हें अपने गुरु के पास जाना है। लीव द फॉल्स नोशन ऑफ बीइंग द बॉडी एंड देन सरेंडर टू द मास्टर, प्रैक्टिस विद एसिड्युटी एंड रिजॉल्व, है ना, पूरे तन मन धन से, पूरे अच्छे से, अपने संकल्प से अपनी साधना करो, इससे ही तुम्हें ये करते करते ही वो आंखें मिलेंगी जिससे तुम उस ज्ञान को देख पाओगे। एंड द लाइट ऑफ दिस ज्ञान विल इनेबल यू टू सी योर सेल्फ इन एवरी बीइंग एंड वेरी थिंग। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये पढ़ने पे ऐसा लग सकता है कि पहले ज्ञान मिलेगा और उसके बाद बोध होगा, है ना, इस लाइन को अगर हम पढ़ेंगे, दिस विल एंडो यू विद द आईज ऑफ नॉलेज एंड द लाइट ऑफ द ज्ञान विल इनेबल यू टू सी योर सेल्फ। देखो ये लैंग्वेज का वो है, लेकिन ये बहुत पहले ही क्लियर किया हुआ है कि वो दोनों एक साथ होते हैं, एकदम एक साथ, ठीक है। द वर्ल्ड लाइज इन द माइंड एंड आई एम नॉट द माइंड इज विद इन आई, है ना, जो संसार है वो मन में है, मन मुझ में है। तो जो जागृत पुरुष है, जो मुक्त पुरुष है, वो सब में उस सेल्फ को ही देखता है, वो सब में ब्रह्मन ही देखता है, वो देखता है कि मैं ही सब में हूँ और सब मैं ही हूँ। प्लीज नोट दिस आई इज नॉट लिंक टू द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, ये तो अब हम लोग सब समझ ही चुके हैं ना, जब भी इस आई का मेंशन होता है मतलब सेल्फ विद द कैपिटल एस। इसी यहीं से जब श्री कृष्णा ने भगवद गीता में बोला था, इट इज़ फ्रॉम दिस प्लेन ऑफ यूनिवर्सल एब्सोल्यूट ट्रुथ, जब श्री कृष्णा ने बोला है ना कि मैं कल्प वृक्ष हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, और देवताओं में मैं इंद्र हूँ, और इंसानों में मैं राम हूँ, है ना, ये एक चैप्टर है ना बहुत सुंदर इसका, पूरा का पूरा जो कृष्ण जी बोलते हैं, तो वो वहीं से बोल रहे हैं। ही इज सेइंग फ्रॉम दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ ही इज सेइंग ऑल ऑफ दिस। फिर वो कहते हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट तुम्हारे छोटे से माइंड को, जो छोटा सा सेल्फ है उसको समझना पॉसिबल ही नहीं है। और जो इग्नोरेंट है, जो अज्ञानी है, वो क्या सोचेंगे, ये कृष्ण तो बड़े अहंकारी हैं, ये तो बहुत ईगोइस्टिक हैं, है ना, उनको बहुत पॉम्पस स्टेटमेंट मिलेगा। पता नहीं आप लोगों ने कभी किसी को सुना है या नहीं, पर मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सच में ये बोला है कि हमें कृष्ण बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद, वो तो हर समय में यही बोलते हैं, मेरे पास आ जाओ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ, हमें नहीं पसंद, भगवान ऐसे इतना अहंकारी कैसे हो सकता है, हमें तो कृष्ण बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, नो प्रॉब्लम, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखो उन्होंने बोला है, तो ऐसा होता है, सच में है ऐसा, लोग सोचते हैं। द आई इज नॉट द आई ऑफ द माइंड, है ना, ना मन का है, ना शरीर का है, ना इंद्रियों का है, दिस आई इज द यूनिवर्सल एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस द सुप्रीम ब्रह्मन. द संस्कृत वर्ड फॉर गॉड इज परमात्मा, हम बोलते हैं ना परमात्मा, तो परम आत्मा. तो कौन है सुप्रीम आत्मा, कौन है परमात्मा, राम है कि कृष्ण है कि शिव है. फिर उन्होंने आगे एक स्टोरी सुनाई है. तो एक बार देवी पार्वती ने शिव जी को पूछा कि हर कोई आप पे ध्यान लगाता है, पर जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो आप किसका ध्यान लगाते हैं, है ना. तो शिव जी ने बोला, मैं खुद पे ही अपना ध्यान लगाता हूँ, आई मेडिटेट ऑन माई रियल सेल्फ. तो पार्वती जी को समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, रियल सेल्फ का क्या मतलब है, है ना. तो शंकर जी मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान दूंगा अगर तुम सच में जानना चाहती हो, आई विल रिवील द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन. एंड फिर बोलते हैं, इट इज सेड दैट देन दे बोथ सैट इन अ सॉलिटरी केव इन अमरनाथ एंड दैट इज वेयर द लॉर्ड डिस्क्लोज द हाईएस्ट ज्ञान टू देवी पार्वती, है ना. इसीलिए अमरनाथ की यात्रा लोग करते हैं ना, और उसमें कुछ है कि वहाँ पे वो दो कबूतर हैं, या जो जिन्होंने भी वो बैठे हुए थे उन्होंने सुन लिया था, तो वो अभी तक हैं वहाँ पे. तो खैर इसका हम जान नहीं सकते क्या सच है या क्या नहीं, लेकिन हाँ समझने के लिए, ज्ञान के लिए इंटरेस्टिंग है ना, इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छी कहानी है. तो इसमें नहीं जाइए कि ऐसा हुआ था कि नहीं होता, डजंट मैटर. ज्ञान इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मॉरल इंपॉर्टेंट है. परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, राम कृष्ण शिव हनुमान गणपति देवी. तो जो हमारे 18 पुराण है, हर पुराण ओम से शुरू होता है, है ना. और ये जो ओम है इसको संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, इसके तीन मात्राएं होती हैं जिनकी 3 states हैं, वेकिंग ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप. और जो फोर्थ पार्ट है, जो उसके ऊपर जो सिंबल होता है हाफ मून विद अ डॉट, वो जो अमात्रा है, दैट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसेंडेंटल द इनफाइनाइट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस. द सिलेबल ओम रिप्रेजेंट्स ब्रह्म. ऑल पुराणास कमेंस विद दिस सिंबल. तो देखो इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया, एक तो ओम का मतलब बता दिया कि ओम क्या है, है ना. और फिर वही बात बता दी कि कौन सी सच है, द ट्रांसेंडेंट स्टेट. न वेकिंग सच है, न ड्रीमिंग सच है, न स्लीपिंग सच है, ये तीनों ही सच नहीं है. इन तीनों के ऊपर भी एक स्टेट है जिसको हम तुरिया अवस्था भी बोलते हैं, उसको तुरिया अवस्था बोला जाता है, वो सच है. और वो कौन, वो जो इन तीनों स्टेट्स में अवेलेबल है, वो अभी जगते हुए भी है, वो सोते हुए भी है, और वो स्वप्न में भी है, ठीक है, वही है. और वही ब्रह्म है. हम सबको पता है कि व्यास जी ने सब पुराण लिखे थे, उन्होंने जो ब्रह्म है उसको शिव से भी रिलेट किया है, मतलब इक्वेट किया है कि ब्रह्म शिव भी है, विष्णु भी है, देवी भी है, और गरुड़ भी है. तो अब ये सवाल आता है कि उनको क्या पता नहीं था कि ब्रह्म कौन है, कि सबसे रिलेट करे जा रहे हैं, ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, है ना, ये सवाल आ सकता है. बट ऑफकोर्स उनको पता था. वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने जो अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग देवता जो यूज़ किए, ये सिर्फ सिंबॉलिज्म है, इट इज़ ऑल मेटाफॉर्स, इट इज़ नॉट रियल. क्योंकि इसमें भी आप देखो बहुत सारे लोगों में लड़ाई होती है, बहुत सारे संप्रदायों में, कि नहीं जो शिव हैं वही असली हैं, नहीं विष्णु असली हैं, कि नहीं ब्रह्म असली हैं, कि नहीं देवी असली है. उसमें भी लोगों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना. तो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द इनटैंजिबल फॉर्मलेस रियालिटी. निराकार को तो नहीं जाना जा सकता, इसीलिए तो साकार बनाया गया है, क्योंकि निराकार को जानने के लिए मन नहीं लग, मन निराकार तक नहीं पहुंच सकता, बुद्धि निराकार तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि निराकार में बुद्धि है, निराकार में मन है, वो कैसे उसको जान सकता है, है ना. तो इसलिए ये साकार बनाए गए हैं. तो क्यों ऐसा किया गया, कि अगर आपकी इंक्लिनेशन, देखो यहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोग हैं, उनके अलग अलग तरह के मन हैं, अलग अलग तरह की भक्ति है. तो अगर आपको शिव अच्छे लगते हैं तो उन्होंने शिव को वो रूप दे दिया, आप शिव को मान के कर लीजिए, हैं तो सब वही, है ना. अगर आपको देवी पसंद है आप देवी पे कर लीजिए, विष्णु पसंद है विष्णु पे कर लीजिए, तो कोई फर्क नहीं है. ब्रह्म का क्या मतलब होता है, ब्रह्म मीन्स कलोसल एब्सोल्यूट. कलोसल का क्या मतलब होता है, जो सब कुछ, एवरीथिंग, द मोस्ट जायंट, द बिगेस्ट, सब कुछ वही है, ब्रह्म वही है। द लिमिटलेस रियालिटी इन विच एवरीथिंग अबाइड्स, देखो इन विच एवरीथिंग अबाइड्स, उसके अंदर सब कुछ है, वो कहीं नहीं है, उसको नहीं जान सकते। इसलिए दिस ब्रह्म इज नन अदर देन द एवर ब्लिसफुल, एवर कॉन्शियस, इटर्नल, ऑल परवेसिव एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, द रियल सेल्फ, है ना। वो ही सच्चिदानंद है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, आप लोगों ने सुना होगा सच्चिदानंद, वो ब्रह्म ही है। लेकिन जो अज्ञानी जीव है ना, ये जो प्राणी है, ये सोचता है कि जो परमात्मा है वो कोई बड़ा मिस्टीरियस, पता नहीं कहाँ रहता है, बहुत बड़ा सा, एक बहुत सारी पावर्स वाला एक होगा और कहीं इनएक्सेसिबल जगह पे कहीं पे रहता है। यही हम सबकी इमेजिनेशन होती है। जैसे शिव को मानने वाले सोचते हैं कि वो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, है ना, कैलाश पर्वत पे उनका अबोर्ड है, हम ऐसा मान के चलते हैं ना। लेकिन सच्चाई इससे दूर नहीं हो सकती, है ना, ये बहुत गलत है जो हम, ये जो जीव मान के बैठा है, क्योंकि परमात्मा इतना क्लियर है अपने आप में ही। देखो सेल्फ एविडेंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। परम मतलब सुप्रीम और आत्मन मतलब रियल सेल्फ। परम मतलब जो सबसे बड़ा है और आत्मन कौन है, जो मैं हूँ, जो सेल्फ है। जब ये आत्मन अपने आप को मन और बुद्धि के साथ अटैच कर लेता है तो ये जीव हो जाता है। जैसे अभी हम यहाँ पे जूम के सेशन पे आ गए हैं तो यहाँ पे एक अलग टाइप की पिक्चर नज़र आ रही है। ट्विटर में हमारी अलग प्रोफाइल है, फेसबुक पे अलग प्रोफाइल है, लिंक्डइन पे अलग प्रोफाइल है। आप कौन सा वाला ऐप यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पे आपका वहाँ पे चेंज हो जाता है, होता कि नहीं होता, है ना। ऐसे ही वो जो आत्मन है, जब उसने इस मन और बुद्धि का, जैसे हम ये जूम का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस मन बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो जब मन बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो जीव बन जाता है। और फिर जब इसकी ये अज्ञान समाप्त होता है, व्हेन द इग्नोरेंस गेट्स डिस्पेल्ड, और जो जीव ब्रेक्स फ्री फ्रॉम द फॉल्स आइडेंटिटी, तो वो क्या जान पाता है कि हाँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सबसे बड़ी आत्मा हूँ। देखो अब इन्होंने यहाँ पे माइक्रोकॉज्म और मैक्रोकॉज्म का मतलब बताया है, उससे रिलेट किया है, जो हम बोलते हैं ना पिंड और ब्रह्मांड। पिंड क्या है, ये शरीर, और ब्रह्मांड क्या है, पूरा, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स, माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म। तो वो क्या कहते हैं, जब ब्रह्म माइक्रोकॉज्म पिंड में इंडिविजुअल यूनिट ऑफ माइंड इंटेलेक्ट में नजर आता है तो वो क्या होता है, वो जीव हो जाता है, है ना। और रिफ्लेक्शन वही वाला जो ब्रह्म है, अगर मैक्रोकॉज्म ब्रह्मांड में नजर आता है, मैक्रोकॉज्मिक माइंड मतलब माया, तो उसको ईश्वर बोला जाता है। तो जो जीव है वही ब्रह्म, मनुष्य उसमें जीव बन गया, और ब्रह्मांड में जो मैक्रोकॉज्म है वहां पे लिया तो वो ईश्वर बन गया। इट इज दिस ईश्वर दैट इज द तत् एंड जीव इज द त्वम इन द ग्रेट ट्रूइज्म तत्त्वम असी दैट दाउ आर्ट। तो ये जो तत्त्वम असी बोला जाता है, उसमें तत् जो है वो कौन है, ईश्वर, कि मतलब तुम ही ईश्वर हो। इसका क्या मतलब है, अगर हम बॉटम लाइन पे जाएं, तत्त्वम असी कि तुम ही ईश्वर हो। वो ब्रह्म ही जीव है और वो ब्रह्म ही ईश्वर है, और वो ईश्वर कौन है, ये जीव ही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर भी आपके बाहर नहीं है, है ना। अब अगर हम पहले वाले से जाएं, हम बोलते हैं कि ईश्वर है, अब ईश्वर बाहर है या अंदर है। अगर मैंने बोला ईश्वर है, कहाँ है ईश्वर, बाहर है कि अंदर है, है ना, अंदर आ गया ना फिर से, कौन जानता है। अगर मैं बोलती हूँ शिव हैं, शिव जी हैं, कौन जानता है कि शिव जी हैं, अंदर, मन जानता है ना। और द सब स्ट्रैटम ऑफ बोथ ईश्वर एंड जीव इज द सिंगुलर सुप्रीम सेल्फ। इन दोनों के नीचे, ईश्वर और जीव के पीछे कौन है, वो है ब्रह्म। सत्य सिर्फ एक है, ट्रुथ इज ओनली वन। जो हमेशा चैतन्य है वो सिर्फ एक है, जो हर जगह है वो सिर्फ एक है, जो हमेशा आनंदित है वो सिर्फ एक है, है ना। द एवर कॉन्शियस इज ओनली वन, द ऑल परवेसिव इज ओनली वन, द एवर ब्लिसफुल इज ओनली वन, ऑल इज वन एंड दैट वन इज ओनली वन। दैट इज वाई वेदा सेज, फर्स्ट नो योर सेल्फ गॉड विल बी ऑटोमेटिकली नोन, है ना। वेदों में इसीलिए बोला गया है कि खुद को जानो, स्वयं को जाने, आत्मज्ञान करो। भगवान को तो अपने आप ही जान जाओगे तुम, खुद को जान जाओगे तुम। और हमने ये किया था ना, वो क्या है जिसको जानने से सब जाना जाता है, आत्मन, है ना, वही चीज आ गई। फिर वो कह रही हैं कि अगर हम ये मान भी लें कि भगवान कहीं बाहर है, दूर है, है ना, तो पहले ये तो देखो कि तुम्हारे मन और बुद्धि में कहाँ है, उसके बाद बाहर भगवान को ढूंढना ना, पहले ये तो देखो तुम्हारे अंदर क्या है। जितने भी हमारे मंदिर हैं उन सब का कुछ ना कुछ एक पास्ट है, हिस्ट्री है, वो बहुत पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं। जैसे जो केदारनाथ का टेंपल है वो भीम ने बनवाया था, वन ऑफ द पांडवाज, इसका मतलब है कि उस समय से पहले केदारनाथ नहीं था, है ना। अगर भीम ने बनवाया था केदारनाथ टेंपल तो इसका मतलब उससे पहले नहीं था। ऐसे ही हरिद्वार का टेंपल किसने बनवाया था, सेज भगीरथ के जो उन्होंने कार्य किए थे उसकी वजह से हरिद्वार के टेंपल बने, तो इसका मतलब वो भी उससे पहले नहीं था। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो देखो क्या कहना चाह रही हैं कि आप केदारनाथ जाएंगे, आप हरिद्वार जाएंगे, आप ऐसे टेंपल्स में जाएंगे जो हजारों साल पुराने हैं, लेकिन आप एक जो जागृत मुक्त गुरु है उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है अरे ये बहुत पुराना है, ये टेंपल है, वहाँ जाएं। लेकिन एक समय था कि वो टेंपल नहीं था, समझ रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रही है। वो टेंपल तो किसी ने बनाया, वो भी अब मृत है, लेकिन कोई है आज जो जागृत है, तो तुम जागृत के पास क्यों नहीं जाते हो, तुम कहाँ मंदिरों के पीछे भाग रहे हो, ये वो बताने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। पीपल प्रेफर टू बाउ टू आइडल्स, किसी को राम में विश्वास है, किसी को कृष्ण में, शिव में, देवी में, तो हर कोई अपने अपने आइडल्स को कर रहा है पूजा। और फिर वो कह रही हैं कि ये मूर्ति पूजा में ऐसा नहीं है, इसकी भी इम्पॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बकवास है, बेकार है। अगर तुम सिंसेयरली करते हो, अगर तुम भाव से करते हो, तो मूर्ति पूजा में भी फायदा है। लेकिन हर किसी के वो होते नहीं हैं, वो भाव नहीं होते। अगर आपका भाव होगा ना तो वो भाव ही आपको आगे ले जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग भाव से भी नहीं करते, ज़्यादातर लोग डर के कारण करते हैं कि ये भगवान है, इन्हें हमें पूजना चाहिए, इनको पूजेंगे तो हमारा सब कुछ सही रहेगा, इनको नहीं पूजेंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए करते हैं, वो भक्ति नहीं होती। तो अगर आपका भाव ही नहीं है तो जो मूर्ति है वो सिर्फ पत्थर है। एज कम्पेयर टू दैट, जो एक जागृत पुरुष है, जो मुक्त है, एनलाइटेंड बीइंग है, वो एक मूर्ति नहीं है, वो एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। दर्शन, अगर आप एक मुक्त पुरुष के दर्शन करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द दर्शन ऑफ ब्रह्मन इटसेल्फ, है ना, क्योंकि वहां से वो ब्रह्म जो है वो प्रकट हो रहा है, वहां पे उसकी रोशनी है उधर। तो इसी से क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर सच में आप अपनी मुक्ति चाहते हैं, सच में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कि आप किसी मंदिर में जाके कोई पूजा करें किसी मूर्ति की, या फिर एक एनलाइटेंड मास्टर की प्रेजेंस में जाइए, तो ये आपको समझ जाना चाहिए। और फिर वो आगे इसी के बारे में बता रही हैं कि इतनी ज़्यादा उसमें पावर होती है मास्टर में, मास्टर के ऑरा में, कि आपकी जो सांसारिक प्रॉब्लम्स है ना वो भी सॉल्व होने लगती हैं, दे ऑल्सो गेट स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट। और अगर आपकी कोई संसारिक इच्छाएं नहीं होती, अगर आप एक गुरु के पास जाते हो संसारिक इच्छा लेकर नहीं जाते हो, तो आपका मन बहुत जल्दी आगे प्रगति करेगा, बहुत जल्दी शुद्ध होगा, ताकि उसको ज्ञान मिल सके। तो कह रही है कि स्वामी अखिलानंद ने बोला है कि अगर तुम सेवा ही करना चाहते हो तो बी इन द सर्विस ऑफ अ मास्टर, गुरु की सेवा करो, सबसे अच्छी बात वही है। फिर वो बता रही हैं आगे कि ये प्लीज़ समझो कि मैं आइडल वर्शिप को, मूर्ति पूजा को कंडेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई एम एंडोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग एनलाइटेंड मास्टर्स, दे विल मच मच मोर टू गेन ओवर देयर। सेंट्स नेवर क्रिटिसाइज आइडल वर्शिप, दे नेवर डिसवेड एनीवन फ्रॉम गोइंग ऑन पिलग्रिमेज, फॉर इफ सम ऑब्लिवियस फोक गेट सम स्पिरिचुअल बेनिफिट फ्रॉम डूइंग दिस, सो बी इट। कि चलो कहीं तो आप कुछ तो शायद आपके अंदर भक्ति भाव आएगा, प्रेम आएगा, शायद आपकी कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर पहले ही प्रोग्रेस हो चुकी होती तो आप मास्टर को छोड़ के एक मंदिर में नहीं जाते, यहाँ पे वो ये बता रहे हैं। फिर वो कह रही हैं, अगर अभी भी तुम्हारा मन करता है कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने का, इसका मतलब है कि तुमने अभी अपने गुरु में ब्रह्म को नहीं देखा, है ना। रिमेम्बर कि जो ये मूर्तियां हैं और ये जो जगह हैं, ये तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकती। दैट कैन ओनली बी गिवन बाय एन एनलाइटन मास्टर। श्री कृष्णा सेज, आई बिस्टॉ अपॉन यू द आईज ऑफ विजडम ओ अर्जुना, सी माई कॉस्मिक सेल्फ। तो कृष्ण तो अर्जुन के गुरु थे ना, तो वहाँ पे उन्होंने ही उन्हें वो आँखें दी थी। तो यहाँ पे वो इस चीज़ को क्लियर कर रही है।